पंचदशी के नवम प्रकरण का नाम है ध्यानदीप प्रकरण। ध्यानदीप प्रकरण के 55वें श्लोक का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। 55वें श्लोक से एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सहसा जिज्ञासु के मन में संशय रहता है। और वेदांत के ही कई आचार्य कहते हैं कि निर्गुण की उपासना नहीं होती, कुछ कहते हैं होती है। इसलिए इस संशय का निवर्तक निर्णय प्रदान करना जरूरी है। तो ये अवांतर प्रकरण ध्यानदीप प्रकरण में विद्यारण्य स्वामी जी प्रारंभ करते हैं। और इसमें विद्यारण्य स्वामी जी का तो मानना है निर्गुण की भी उपासना होती है। अब इसीलिए ये कहा गया कि उपासना की परिभाषा वेदांत के ही आचार्यों ने दो प्रकार की है। एक गुणचिंतनम उपासनम, ये उपासना की परिभाषा जिन आचार्यों के मत में है, तो गुणों का चिंतन उपासना कहलाएगी। तो गुणों का चिंतन गुण वाले के होगा, और जो हो निर्गुण है उसके गुणों का चिंतन रूप उपासना नहीं बनेगी। और उपासना की परिभाषा दूसरे आचार्य जो निर्गुण की भी उपासना होती है मानते हैं, उनके यहां है शास्त्र प्रतिपादित अर्थाकार चित्त वृत्तियों की आवृत्ति, ये उपासना है, प्रत्यावृत्ति उपासना। तो निर्गुण विषयक यदि वृत्ति होगी तो जिस पदार्थ विषयक भी वृत्ति बनेगी, तो उस वृत्ति की एक बार यदि उत्पन्न हुई तो आवृत्ति भी हो सकती है। तो वृत्ति की आवृत्ति रूप उपासना सगुण के तरह निर्गुण की भी होगी। इसे 55वें श्लोक में बता दिया गया। अब जो निर्गुण की उपासना नहीं मानते वे पूर्व पक्षी के रूप में अपने निर्गुण की उपासना मानने वाले आचार्य के मत में कोई न कोई विरोध दिखाते जाएंगे, अनुपपत्ति बताते जाएंगे, उसका निराकरण निर्गुण की उपासना मानने वाले को करना पड़ेगा। जो जो अनुपपत्तियां बताते हैं, असंगतियां बताते हैं, उन असंगतियों को दूर करना पड़ेगा ना। तो 56वें श्लोक से यही निर्गुण की उपासना मानने पर जो जो अनुपपत्तियां आती हैं, जो विरोध उपस्थित होता है, वो पूर्व पक्षी के द्वारा बता करके निर्गुण की उपासना मानने वाले के द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है। तो 56वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु निर्गुणस्य ब्रह्मणो वांग मनस गोचरत्वा भावात नोपाश्यत्वम इति आशंक्य वेदन पक्षेपि अयम दोषः समान इत्याह। ये 56वें श्लोक की अवतरण टीका है। आशंक्य इससे पहले तक, इति आशंक्य के पहले तक निर्गुण की उपासना मानने में जो अनुपपत्ति है, वो बताई जा रही है। आशंके के बाद में उसका समाधान किया जा रहा है। तो ननु का अर्थ है आशंका है। कौन सी आशंका है? तो कहते ये कि निर्गुणस्य ब्रह्मणो वांग मनस गोचरत्वाभावात् न उपास्यत्वम्। यानी निर्गुणस्य ब्रह्मणो उपास्यत्वम् न, ऐसा अन्वय करिए, ये प्रतिज्ञा होगी। निर्गुण ब्रह्म उपास्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म में उपास्यत्व नहीं हो सकता। कहा क्यों? तो इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है, वांग मनस गोचरत्वाभावात्। ये पंचमेंत जो निर्वह वाणी और मन का विषय नहीं है, जो शब्द का और मन का विषय बनेगा उसे कहा जाता है वांग मनस गोचर। उसमें एक धर्म रहता है वांग मनस गोचरत्व। जो सगुण ब्रह्म है उसमें वो वाणी का तथा मन का विषय बनने के कारण उसमें वांग मनस गोचरत्व रहेगा। और पूर्व पक्षी कहते हैं यत्र यत्र वांग मनस गोचरत्वम तत्र तत्र उपास्यत्वम। जो वाणी तथा मन का विषय होगा वह उपास्य होगा। सगुण ब्रह्म मन वाणी का विषय है इसलिए उपास्य है, और निर्गुण ब्रह्म मन वाणी का विषय न होने से उपास्य नहीं होगा। एक युक्ति बताई ना, इस युक्ति का विरोध है, इस युक्ति से विपरीत है निर्गुण ब्रह्म को उपास्य मानना। यह युक्ति तो बता रही है निर्गुण ब्रह्म उपास्य हो नहीं सकता, और आप कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है, तो इस युक्ति का विरोध होगा ना। ये पूर्व पक्षी ने कहा, शंका करने वाले ने। अब इसका उत्तर जिस अभिप्राय से 56वें श्लोक में दिया जा रहा है वह अभिप्राय अवतरण में टीकाकार ने कहा कि वेदन पक्षेपि अयम दोषः समान। तो कहा जो निर्गुण ब्रह्म को वांग मन का अविषय होने के कारण अनुपास्य मानना चाह रहे हैं, तो फिर जो वांग मन का विषय नहीं होगा, मन वाणी का विषय नहीं होगा, उसका वेदन भी नहीं होगा। वेदन कहते हैं ज्ञान को, फिर उसमें वेद्यत्व भी नहीं रहेगा। वेदन तो क्या है? वृत्त्यात्मक ज्ञान, और वृत्त्यात्मक ज्ञान का जो विषय बनेगा, तो वृत्ति तो मन का परिणाम होने से मन ही है ना। तो निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति मन की बनेगी कि नहीं बनेगी? यदि बनेगी तो फिर उस वृत्ति का विषय होगा तो उसे वेद्य कहा जाएगा। तो मन का विषय ही बन गया ना, वो वृत्ति ही मन है, तो उसमें मनो अगोचरत्व तो कैसे हुआ? वो तो मन का गोचर बन गया, वृत्ति का विषय बन गया, तो वृत्ति स्वयं मन है मन का परिणाम होने से। तो वेद्यत्व यदि मानते हो तो मनोविषयत्व भी मानना पड़ेगा फिर। तो आपका जो हेतु है वांग मनस गोचरत्वाभाव वो सिद्ध नहीं होगा, मनस गोचरत्व ही आ गया, उसमें मन का गोचर बन गया, विषय बन गया। तो मन गोचरत्वाभाव रूप हेतु की असिद्धि हुई आपके अनुमान में, तो ये एक दोष माना जाता है। इसे कहा जाता है स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष। निर्गुण ब्रह्म पक्ष है, निर्गुणम ब्रह्म न उपास्यम वांग मनसो गोचरत्वाभावात, ये हेतु है ना। तो इसमें वांग मनस गोचरत्वाभाव निर्गुण ब्रह्म में नहीं है, अपितु मनोगोचरत्व ही है। वृत्ति यदि निर्गुण ब्रह्म विषयक बनती है ये कहोगे, उसमें वृत्ति व्याप्ति मानोगे, तो वृत्ति का विषय बनने से ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म भी मन का विषय बना, तो मनोविषयत्व ही उसमें आया। मनोगोचरत्वाभाव रूप हेतु पूर्व पक्षी के अनुमान में जो बताया गया था वो नहीं रहा ना, वो न रहने से पक्ष में हेतु का अभाव स्वरूपासिद्धि नाम का दोष कहलाता है। और ये स्वरूपासिद्धि नाम का दोष जिसमें आता है उसे कहा जाता है असिद्ध हेत्वाभास। इसलिए आपका ये अनुमान सही अनुमान नहीं है, वो अनुमानाभास है, तर्क नहीं है, तर्काभास है। तो तर्काभास का विरोध कोई विरोध नहीं माना जाता, जो सत्तर्क होता है, युक्ति श्रुति मूलक तर्क होता है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये तो आपका तर्क स्वयं ही दोषयुक्त हो गया, उसमें जो हेतु है दुष्ट हेतु है, दोषयुक्त हेतु है, ये विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं। इसलिए कहा कि वेदन पक्षे भी, यानी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, निर्गुण ब्रह्म वेद्य है, ज्ञेय है, उसमें ज्ञेयत्व है, इस पक्ष में भी अयम दोष, ये दोष बना रहेगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वांग मनस गोचरत्वा भावात निर्गुण ब्रह्म अनुपास्य है, ये कहा जा रहा है। तो 56वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अवांग मनस गम्यम तन्नोपास्यमिति चेत् तदा, अवांग मनस गम्यस्य वेदनम न च संभवेत्। तो तत उपास्यम न इति चेत, तत यानी निर्गुणम ब्रह्म, तत कहां पर है, तन्नोपास्यम के पास में जो तत है ना, डबल नकार है उसमें त को न हो जाता है, एक न को त बना देना अलग करेंगे तो तत न उपास्यम, तन्नोपास्यम में से तीन अलग अलग पद निकलेंगे, तत न उपास्यम। तो तत यानी निर्गुणम ब्रह्म, उपास्यम न क्यों, तो कहते अवांग मनस गम्यम, वह वाणी और मन का अविषय होने से, हेतुगर्भ विशेषण है ये। वांग मनस गम्य कहा जाता, गम्य का अर्थ होता है विषय, तो वांग मनस गम्य का अर्थ निकलेगा मन वाणी का विषय, अवांग मनस गम्य का अर्थ निकलेगा मन वाणी का विषय नहीं है जो ब्रह्म, मन वाणी का विषय न होने से न उपास्यम इति चेत, ऐसा यदि आप निर्गुण ब्रह्म को कहना चाहोगे तो तदा, कहते तब तो वह वांग मन का विषय न होने से ज्ञान भी उसका नहीं होगा, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं होता है ये मानना पड़ेगा। यदि ज्ञान होता है तो होने वाला ज्ञान तो होता है मन ही, मन की वृत्ति होने से वृत्त्यात्मक ज्ञान है ना, वो मन ही कहलाएगा। तो ये कहते हैं कि अवांग मनस गम्यस्य वेदनम न तो संभवेत तदा, तो निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी का अविषय मानने पर तो उस निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी संभव नहीं होगा। लेकिन ज्ञान मानना यदि इष्ट है तो फिर उपासना भी मानो। ज्ञान के लिए उसे मन वाणी का विषय मानोगे तो फिर उपासना के लिए मन वाणी का अविषय दिखा करके अनुपास्य तो नहीं बता सकते। ये सिद्धांती कहते हैं, यानी विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। आगे हैं 57वें श्लोक की अवतरण टीका। 57वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए कि ननु ब्रह्म अवांग मनस गोचरम इत्येवं ज्ञातुं शक्यम् इति आशंक्य एवं एव उपासितुम् अपि शक्यम् इत्याह। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान स्वीकार करने वाले किंतु उपासना न मानने वाले। निर्गुण ब्रह्म ज्ञेय है, उपास्य नहीं, ऐसा मानने वाले यदि ये कहते हैं क्या कि ब्रह्म का ज्ञान इस रूप में होगा कि ब्रह्म अवांग मनस गोचरम, मन वाणी का अविषय है ज्ञेय ब्रह्म, इस रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है। मन वाणी के अविषय के रूप में ही ब्रह्म को जाना जाता है, इसी रूप में ज्ञान होगा। इत्येवम का अर्थ है इसी प्रकार का ज्ञान होगा। तो कहते हैं फिर यदि ज्ञान हुआ का मतलब वृत्ति हुई, ब्रह्म अवांग निर्गुण ब्रह्म अवांग मनस गोचर है इत्याकारक वृत्ति का विषय बना, तो फिर वैसी ही उसकी आवृत्ति भी करो, वही उपासना हो जाएगी। ये कहते हैं तो एवं एव उपासितुम अपि शक्यम। एवं एव से लेना कि ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म अवांग मनस गोचर है ऐसी जो वृत्ति बनी उसी वृत्ति का आवर्तन करना भी शक्य है, संभव है। ये 57वें श्लोक में बताया जा रहा है, इसलिए 57वें श्लोक का उच्चारण कर लें। वागाद्य गोचराकारम् इत्येवं यदि वेत्यसौ, वागाद्य गोचराकारम् इत्युपासीतनो कुतः। तो वागादि अगोचराकारम ब्रह्म, ऐसा निर्गुण ब्रह्म को ज्ञानी जानता है। असो यानि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञाता, निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला। कैसे जानेगा? तो कहते हैं वागादि अगोचरम, वागादि अगोचर ब्रह्म है, इस रूप में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो वागादि अगोचरत्व तो ही बना रहता है और ज्ञान भी होता है। तो कहते हैं तब तो उपासना भी इसी प्रकार से उसकी कर लो। तो वागाद्य गोचराकारम इति कुतः नो उपासित, नो का अर्थ है निषेध अर्थ में न, क्यों उपासना नहीं होगी? तो किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा जरूर उपासना होगी। कुतः का अर्थ है किस कारण से इस रूप में उसके उस वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना क्यों नहीं होगी, का अर्थ होगा जरूर होगी। तो ऐसा ही उस वृत्ति का आवर्तन करो, जिस रूप से ज्ञान का विषय बन रहा है उसी रूप से ब्रह्म की वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना होगी। अब अष्टम 58वें मंत्र का अवतरण है टीका में, सरल सरल श्लोक यानी एक छोटी छोटी शंका है उनका उत्तर है। अब बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हैं, और नहीं पूछ रहे हैं तो हम जितना अपने से बताना है उतना तो बताते जा रहे हैं, और जो हमने बताया उसमें नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। तो 58वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हाँ, शक्ति जब वाणी का विषय नहीं है कहते हैं, का मतलब शब्द का विषय नहीं है, तो शब्द की शक्ति का विषय नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ वही बनता है जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है जाति क्रिया गुण संबंध, वो जिसमें रहेगा वह वाच्य बनेगा। ब्रह्म में ये जात्यादि नहीं है शब्द प्रवृत्ति निमित्त, इसलिए वह वाणी का अविषय है। तो मन का अविषय है का मतलब, तो यन मनसा न मनुते, हाँ, मन का वो प्रकाशक होने से मन का अविषय है, मन उसको प्रकाशित नहीं करता, ये कहा गया। तो मन वाणी का अविषय है। अब 58वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ब्रह्मणः उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत, यहां पर लगता है कुछ छूट गया कि बराबर है सब। अवतरण टीका में ब्रह्मणः उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत इति आशंक्य, तो आपको कुछ छूटा हुआ लग रहा है या पूर्ण लग रहा है ये वाक्य? क्या छूटा है? हो तो विसर्ग तो लोप हो जाता है, बाकी पूर्ववर्ती श्लोकों की अवतरण टीका की शुरुआत में कौन से पद का प्रयोग है? यहां है क्या? तो वो शब्द छूटा है कि नहीं? एक एक शंका करते जा रहे हैं, उसका उत्तर देते जा रहे हैं। तो शंका का वाचक ननु शब्द, वो प्रूफ देखने वाले से छूट गया तो आपसे भी छूटना नहीं चाहिए ना। पढ़ने वाले तो और प्रूफ देखने वाले की गलती निकालने वाले होते हैं ना, तो ननु एक शब्द होना चाहिए। पहले वाले जो भी श्लोक श्लोकों की अवतरणिका आ रही है उसमें ननु ननु ऐसे रहता है ना। तो ननु उपास्यत्वे, ब्रह्मणः उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत, तो ननु यानी एक आशंका है। क्या आशंका है? कि ब्रह्मण यानी निर्गुणस्य ब्रह्मण, निर्गुण ब्रह्म को उपास्य मानने पर उसमें सगुणत्वं प्रसज्येत, जो वो शुरू शुरू में पढ़ाया जाता है ना, वो मन से निकलना बड़ा कठिन होता है। तो जिसको जिसके आचार्य ने उपासना की ये परिभाषा दी है कि गुण चिंतनम उपासनम, उसके मन में वो किसकी पत्थर की लकीर बन जाती है। पत्थर पर वो जो खरोच करते हैं ना, या लोहे पे, तो ऐसा जम जाता है कि उसको सहसा नहीं निकलता। तो शंका करने वाले कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को यदि आप उपास्य मानोगे तो उसके मन में यही परिभाषा बैठी हुई है, यद्यपि वृत्ति की आवृत्ति भी उपासना होती है, ये परिभाषा बता दी, लेकिन वो अभी जमी नहीं है हृदय में, वो सुन करके निकल जाती है। और उपासना कहते ही गुण चिंतनम ये परिभाषा आती है, और निर्गुण ब्रह्म को उपास्य मानोगे तो उसमें सगुणत्व की आपत्ति आएगी, ये शंका उसके हृदय में आ जाती है। तो ये कहते हैं कि ननु ब्रह्मणः उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत, ब्रह्म को यदि आप उपास्य मानोगे तो ब्रह्म में सगुणत्व की आपत्ति आएगी, क्योंकि उसके गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। यही उपासना है उनके दृष्टि में। तो ये तो कब कहा होगा, शुरू शुरू में वो ऐसा जमा हुआ, तो ये जो अंकुर डाला था, बीज बोया था कि वृत्ति की आवृत्ति भी उपासना होती है, इसे इस पेड़ ने उगने ही नहीं दिया उनके हृदय में बुद्धि में। बड़े पेड़ के नीचे बोया हुआ बीज कुछ तो अंकुरित ही नहीं होता, एक हाथ दो अंकुरित हो भी जाएगा तो अच्छी तरह से फलने तक टिकता ही नहीं है, और कोई टिक भी जाए तो जैसा पेड़ के बाहर पेड़ की छाया से बाहर वाला फलता है ऐसा फल नहीं आता उस फसल में जो पेड़ के नीचे बुई है। ऐसे ही सहसा पहले आचार्य ने बुद्धि में डाली हुई जो बात है वो दूसरी बात को जमने नहीं देती, इसलिए कहा कि ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत। इस प्रकार की आशंका होने पर इसका समाधान विद्यारण्य स्वामी जी जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वो अभिप्राय बताया जा रहा है कि वेद्यत्वेपि तत् सगुणत्वं स्यात्। ते आप निर्गुण को वेद्य मानोगे तो वेद्यत्व भी उसका गुण हो जाएगा, तो वेद्यत्वेपि तत् सगुणत्वं स्यात् यानी ब्रह्मण सगुणत्वं स्यात्। तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, तो तत् सगुणत्वं यानी ब्रह्म सगुणत्वं स्यात्, ब्रह्म में सगुणत्व की आपत्ति आएगी ब्रह्म को वेद्य मानोगे तो। सविशेष हो जाएगा ना, वेद्यत्व ही विशेष रहेगा उसमें, ये बताया जा रहा है दोष। तो सगुणत्वमुपाशत्वात् यदि वेद्यत्वतोपि तत् वेद्यं चेल्लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपाश्यताम्। तो ये कहते हैं कि उपास्यत्वात् सगुणत्वं ब्रह्मण आपद्येत, ऊपर से इन दो शब्दों का अध्याय करना, ब्रह्मण उपास्यत्वात् ब्रह्मण सगुणत्वं आपद्येत। ब्रह्म को आप उपास्य मानोगे तो फिर ब्रह्म को सगुण मानना पड़ेगा, ऐसा यदि आप कहोगे पूर्व पक्षी। तो कहते वेद्यत्वतोपि तत्, तत् यानी सगुणत्वं ब्रह्मण, ब्रह्म में सगुणत्व की आपत्ति ब्रह्म को वेद्य मानने पर भी समान होगी, प्राप्त होगी, उसे सगुण मानने की आपत्ति आएगी। तो यदि वेद्य मानने पर भी सगुणत्व का निराकरण इसको लेकर के करते हैं कि वेद्यं चेत लक्षणावृत्तिया, कहते हैं हम ब्रह्म को जो शब्द का प्रवृत्ति निमित्तभूत गुण है ना उस गुण वाला नहीं मानते, निर्गुण ब्रह्म को जो गेय ब्रह्म है उसको, उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्तभूत गुण तो नहीं है, इसलिए वाच्यार्थ नहीं है, अपितु शब्द से लक्षणा से उसे जाना जाता है, लक्षणा वृत्ति का विषय बनता है वो शब्द के। तो लक्षणा वृत्तिया शब्द की दो प्रकार की वृत्ति होती है, वृत्ति कहते हैं संबंध को, शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है वो दो प्रकार का, एक शक्ति और एक लक्षणा। तो शक्ति संबंध से शब्द अपने अर्थ को बताएगा तो शब्द का जो चार प्रकार का प्रवृत्ति निमित्त बताया जाता है उनमें से कोई न कोई होना चाहिए। और यदि लक्षणावृत्ति से बताना है तो इसकी जरूरत नहीं। तो हम लक्षणावृत्ति से निर्गुण ब्रह्म को वेद्य मान रहे हैं, इसलिए उसमें सगुणत्व की आपत्ति नहीं है। ऐसा यदि कहोगे तो कहा फिर ठीक है, लक्षणावृत्ति से शब्द के लक्षणावृत्ति से जाना गया जो ब्रह्म, वह मन में ब्रह्म को लक्षित कराने वाला जो शब्द है वह वृत्ति लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है, शब्द का लक्षार्थभूत जो निर्गुण ब्रह्म है, तदाकार वृत्ति कराएगा ना, तब तो लक्षणावृत्ति से शब्द ने अपने लक्षार्थ को बताया, लक्षार्थ का वो ज्ञापक बना, ज्ञान कराया, ये माना जाएगा। तो वृत्ति तो बनेगी मन की, वो लक्षाकार वृत्ति बनेगी, और यदि शक्ति संबंध से बनती है तो शक्याकार वृत्ति कहा जाता है। तो शक्याकार वृत्ति भले ही न बने, शब्द से लक्षाकार वृत्ति बनेगी, और वो वृत्ति भी मन का ही परिणाम होने से मन का वो विषय बनेगा, और मन का विषय होने से वह मनोवृत्ति का आवर्तन भी लक्षाकार मनोवृत्ति का आवर्तन रूप उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी हो जाएगी। इसे यहां पर कह रहे हैं वेद्यंचेत लक्षणावृत्तिया तो लक्षितम समुपास्यताम, जो लक्षित हुआ शब्द से लक्षणावृत्ति से जाना गया जो लक्षार्थभूत निर्गुण ब्रह्म, उसे लक्षित कहा जाएगा। तो लक्षणावृत्ति से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक होता है। ज्ञान किस लिए चाहिए? अध्यास की निवृत्ति के लिए, और अध्यास की निवृत्ति होती है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान या परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक नहीं होता, इसलिए लक्षणावृत्ति से जो परोक्ष ज्ञान कहो या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हुआ उसे अध्यास का निवर्तक दृढ़ अपरोक्ष में परिणत करने के लिए उपासना की आवश्यकता है, उसकी दृढ़ता के लिए। हाँ, उपासना यानी निधिध्यासन, वो दृढ़ता के लिए है। वो अदृढ़ क्यों रहता है? विपर्य रहने से, संशय रहने से। संशय है यदि प्रमेय विषय तो मनन, और विपर्य है तो निधिध्यासन। निधिध्यासन का ही दूसरा नाम यहां पर उपासना है, निर्गुण की उपासना। तो वेद्यं चेत लक्षणावृत्त्या लक्षितम समुपास्यताम, तो शब्द से लक्षणा से जाना गया जो ब्रह्म है उस ब्रह्म ज्ञान ने अध्यास को निवृत्त नहीं किया, समूल अध्यास का प्रहार नहीं हुआ। तो अध्यास का प्रहार करना ही तो उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान का, और वो ब्रह्म ज्ञान हुआ और अध्यास भी बना रहा तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान निष्फल माना जाएगा। उसे सफल बनाने के लिए, अध्यास निवर्तन में समर्थ बनाने के लिए, दृढ़ करने के लिए जरूरी है लक्षित ब्रह्म की आवृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति, लक्षाकार वृत्ति की आवृत्ति, वही उपासना कहलाएगी। तो ये कहा कि लक्षितम समुपास्यताम। 58वें श्लोक की थोड़ी व्याख्या भी है टीकाकार के द्वारा की गई, उसे देखिए। पूर्वार्ध में जो अंतिम पद है 58वें श्लोक के, कौन है अंतिम पद? तत्। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार तत् यानी सगुणत्वम, तत्का अर्थ कर दिया। और उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं, ये जो ननु से वेद्यन चेत, यहां से पहले तक की टीका है वो उत्तरार्ध का अवतरण है। उत्तरार्ध 58वें श्लोक का जिस आशंका का निराकरण करने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा वो आशंका बताई जा रही है। ननु लक्षणावृत्त्याश्रयणात् न वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग इति आशंक्य। हम लक्षणावृत्ति से मानते हैं ब्रह्म शब्द से जाना जाता है, ब्रह्म वेद्य है, इसलिए वेद्यत्व की प्रयोजक लक्षणावृत्ति होने से, शक्ति वृत्ति न होने से उसमें सगुणत्व का प्रसंग नहीं आएगा, निर्गुणत्व भी बना रहेगा वेद्यत्व भी रहेगा लक्षणावृत्ति से। इस प्रकार की आशंका यदि सगुण की ही उपासना होती है निर्गुण की नहीं, ऐसा मानने वाले कहते हैं, इस प्रकार की शंका करते हैं यदि, तो उत्तरार्ध में कहते हैं फिर उसी रूप में निर्गुण की उपासना भी करो। हमको यही तो कहना है कि जिस रूप में उसको जाना उसी रूप में तदाकार वृत्ति की आवृत्ति करो। वो किसके लिए? उसमें दृढ़ अपरोक्षता के लिए उस वृत्ति की आवृत्ति करो, यही उपासना हो जाएगी। तो ये लिखते हैं कि उपासनम अपि तथैव क्रियताम, तो जिस जैसे उसको जाना लक्षणावृत्ति से तो वृत्ति बनी, शब्द की लक्षण शब्द लक्षणा से जिस लक्षाकार वृत्ति बनी उस वृत्ति का आवर्तन करो, लक्षाकार वृत्ति का वो उपासना कहलाएगी, वो निर्गुण की उपासना होगी। तथैव क्रियताम इत्याह वेद्यं चेत, ये उत्तरार्ध में ये बताया गया कि वेद्यंचत लक्षणावृत्तिया लक्षितम समुपास्यताम। 59वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु ब्रह्मणः उपास्यत्वं श्रुत्या निषिध्यते इति शंकते। अभी तक तो युक्ति के आधार पर शंका कर रहे थे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होती, निर्गुण ब्रह्म उपास्य नहीं होता, ये बताने वाले निर्गुण ब्रह्म की उपासना मानने वाले के पक्ष में युक्ति विरोध नामक दोष बता रहे थे, लेकिन उस युक्ति विरोध का तो परिहार कर दिया। अब श्रुति विरोध दिखाया जा रहा है और श्रुति का विरोध तो ठीक नहीं है, श्रुति तो सर्वोपरि है। और श्रुति यदि ये कहे कि ब्रह्म उपास्य नहीं है, ज्ञेय ब्रह्म, और तब भी उसकी उपासना मानते हैं कोई, तो ज्ञेय ब्रह्म की उपासना का निषेध करने वाली श्रुति का विरोध उनको सहन करना पड़ेगा। और श्रुति विरुद्ध जो भी बात होती है वो भगवान भी कहें तो वैदिकों के लिए ग्राह्य नहीं होती, इसलिए महान विरोध श्रुति विरोध बताया जा रहा है निर्गुण को उपास्य मानने पर, ये शंका करते हैं। ये 59वां श्लोक शंका रूप ही है और 60वें श्लोक में उसका उत्तर दिया जाएगा। इसलिए लिखा 59वें श्लोक के अवतरण में कि ननु ब्रह्मणः उपास्यत्वम् श्रुत्या निषिध्यते इति शंकते, कि ब्रह्मण यानी ज्ञेय ब्रह्मण, जो ज्ञेय ब्रह्म है वेद्य ब्रह्म है उसके उपास्यत्व का निषेध स्वयं श्रुति करती है। केनोपनिषद पढ़ा है ना, तो केनोपनिषद में क्या कहा गया, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो गेय ब्रह्म वह नहीं है जिसकी उपासना की जाती है, का मतलब गेय ब्रह्म की उपासना का निषेध कर रही है श्रुति केनोपनिषद में, और उसका विरोध होगा वेद्य ब्रह्म को उपास्य मानोगे तो, ऐसा कह रहे हैं सगुण ब्रह्म को ही उपास्य मानने वाले। 63वें श्लोक में उनकी शंका है, ब्रह्म विद्धि तदेव त्वम् नत्वीदं यद उपासते इति श्रुतेरुपाशत्वम् निषिद्धं ब्रह्मणो यदि। तो तदेव ब्रह्मत्वम् विद्धि, ऐसा अन्वय करिए, खाली श्रुति का वही पूरा का पूरा पद तृतीय पाद है ना, तदेव ब्रह्मत्वम् विद्धि, खाली क्या किया कि ब्रह्म को पहले ले लिया, विद्धि को बाद में ले लिया, कि ब्रह्म विद्धि तदेव त्वम्, तुम उसी को वेद्य ब्रह्म समझो, पारमार्थिक ब्रह्म समझो। किसको कहते हैं, जो मन से नहीं जाना जाता, यन मनसा न मनुते, तो मन जिसको विषय नहीं बना सकता, अपितु मन जिसका विषय बनता है, मन जिससे अपने चिंतनीय का चिंतन सामर्थ्य प्राप्त करता है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वो ब्रह्म तुम हो, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानो, ये वहां पर कहा गया है। और नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना की जाती है वह पारमार्थिक ब्रह्म नहीं है, ऐसा श्रुति पारमार्थिक ब्रह्म को ज्ञेय तो बता रही है, वेद्य तो बता रही है, लेकिन उसमें उपास्यत्व का निषेध कर रही है। और उस वेद्य ब्रह्म को आप ब्रह्म उपास्य कहोगे तो उस श्रुति का विरोध होगा। हाँ, भेद नहीं, उस श्रुति का विरोध, श्रुति मना कर रही है और वो कर रहे हैं, तो विरोध होगा श्रुति का, इस प्रकार की शंका हुई। तो इस शंका का समाधान 60वें श्लोक में आ रहा है, तो उससे पहले 59वें श्लोक का थोड़ा व्याख्यान भी टीकाकार ने किया है ना, वो टीका देखिए। यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये केन उपनिषद है, कि जो मन से नहीं जाना जाता, जिससे मन प्रकाशित होता है और अपने प्रकाश्य अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य पाता है, वही ब्रह्म तुम हो, मन का साक्षीभूत ब्रह्म तुम हो, ऐसा जानो। नेदम यदि न उपासते, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उपास्य ब्रह्म नहीं है। इति श्रुति उपास्यस्य ब्रह्मत्वम निषेधयति, जो उपास्य है उसमें प्रत्येक अभिन्नत्व का निषेध कर रही है। प्रत्येक अभिन्नत्व का यानी शोधित त्वमर्थ के साथ शोधित तदर्थ का निषेध कर रही है। तो उपास्यस्य ब्रह्मत्वम निषेधयति, त्वम यद अवांग मनस गम्यम तदेव ब्रह्म विद्धि इदम इति आप मन वाणी के अविषय भूत उसी ब्रह्म उसी को ब्रह्म समझो। कौन इदम इति वही मैं हूं, इदम का अर्थ है अहम ऐसा। और यत तू उपासते यानी उपासक जिसकी उपासना करते हैं, उपासते पुरुषा यानी उपासका, तन न विद्धि वह वेद्य नहीं है, उपास्य है। इति योजना ऐसा अन्वय करना का मतलब प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म सबकी अंतरात्माभूत ब्रह्म उपास्य नहीं है ये श्रुति कह रही है, और उसी की उपासना आप बता रहे हो तो श्रुति विरुद्ध बात बताने जा रहे हो, तो अवैदिक सिद्ध हो जाओगे, आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। विद्यारण्य स्वामी जी को कह रहे हैं लोग, वे सगुण की उपासना मानने वाले। इसका उत्तर 60वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।